السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اس آیت میں اللہ پاک نے پوری دنیا کا خلاصہ پانچ چیزیں بتلائی. آدمی کی پیدائش سے لے کر کے آخرت میں خدا کے سامنے کی پیشی اور جنت دوزخ کے فیصلے تک، اس سب کا خلاصہ پانچ چیزیں. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی کی بھی کل پانچ ہی دن کی ہے. ہفتے کے سات دن ہوتے ہیں، ساؤتھ میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں، سات ہی دن ہوتے ہیں. ایک دن پیدائش کا نکال دو، ایک دن مرنے کا نکال دو، تو باقی رہے پانچ. اور قیامت میں ہر ایک سے جو سوالات ہوں گے وہ بھی پانچ ہی ہوں گے. لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس، کہ قیامت میں کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے، کوئی ذرا برابر وہاں سے حرکت نہیں کر سکے گا جب تک کہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے. عن عمره فيما افنا، زندگی کہاں بتائی. وعن شبابه فيما ابلا، جوانی کہاں لٹائی. وعن ماله من اين اكتسبه، مال سے متعلق کمائی کی کیا شکلیں تھیں، حلال حرام، جائز ناجائز، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا. وفیما انفق، اور وہ کمائی کا پھر مصرف کیا تھا، خرچ کہاں کیا. شریعت کی روشنی میں، خدا کو راضی کرنے والی چیزوں میں، یا اپنی ہوا و حویث اور اپنی نفس کی خواہشات میں. وعن علمه ماذا عمل بما علم، اور ہر ایک سے اس کی معلومات کے بارے میں کہ جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا. کہ دنیاوی زندگی بھی پانچ ہی دن کی ہے، اور قیامت کے سوالات بھی پانچ ہیں، اور اس پوری زندگی کا خلاصہ بھی پانچ ہی چیزیں ہیں. لعبوں و لہبوں و زینتوں و تفاخروں بینکم و تقاثر فی الاموال والاولاد، کھیل، تماشا، فیشن، فخر و غرور کے نعرے، اور مال اور اولاد کی کثرت کے قصے. جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، شروع میں یہ دو اسٹیج ایک ساتھ ہوتے ہیں. کبھی بچہ کھیلتا ہے، کبھی کھیلنے والوں کو دیکھتا ہے، کبھی خود کھیلتا ہے، کبھی کھیلنے والوں کو دیکھتا ہے. یہ دونوں اسٹیج ہوتے ہیں ساتھ. کبھی سائیکل پر خود سوار ہوتا ہے، کبھی سائیکل جانے والوں کو देख के खुश होता है, है ना। उसके बाद एक दौर आता है जब आदमी इन दोनों से निकल जाता है, खेलकूद से, वजीनतुल फैशन, मेरी शर्ट ऐसी हो, मेरी पतलून ऐसी हो, मेरे सॉक्स ऐसे हो, मेरा बूट ऐसा हो, मेरे घर का फर्नीचर ऐसा हो, मेरी गाड़ी ऐसी हो, उसका हॉर्न ऐसा हो, फैशन। कोई मरे, कोई जिए, कोई किसी के घर का चूल्हा बुझे, किसी के घर जले, इसको इसकी परवाह नहीं होती। एक उम्र ऐसी होती है, फैशन अपनाने वाली उम्र, के इसे कहीं का कोई होश नहीं। अब्बा पर कितना कर्जा है, अम्मा कितनी परेशान है, भाइयों का क्या हाल है, मुझे मेरी चॉइस का जूता चाहिए, मेरी चॉइस का कपड़ा चाहिए। बेटा अपनी हैसियत नहीं है, अपनी आमदनी इतनी नहीं है, तो फिर बाप क्यों बने थे? क्या कहता है, फिर बाप क्यों बने थे? एक फैशन का जमाना, व तफाखुरुम बैनकुम, आपस में फख्र गुरूर, तुम्हारा खानदान छोटा, हमारा बड़ा, तुम्हारी नाक छोटी, हमारी लंबी, तुम्हारा रंग काला, हमारा गोरा, हम बड़े बाप के, तुम छोटे बाप के, एमना ता तो आपड़ा थी छोकरी नहीं देवाई, आपड़ू खानदान तो बहु ऊंचू, आपड़े तो बहु ऊंचा लोको, आपड़ी पोईरी ता नहीं जाए। अच्छा भाई, वतफाखुरुम बैनकुम वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, माल और औलाद के कजे है, तुम्हारे पास इतना, हमारे पास इतना, तुम किराए के मकान में रहते हो, हम जाती मकान में रहते हैं, तुम छोटे मकान में रहते हो, हम बंगलों में रहते हैं, तुम्हारे दो कमाने वाले, हमारे चार कमाने वाले, ये एक फख्र गुरूर का नारा होता है। लईबुम व लहबुम व सीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। लेकिन सुभान अल्लाह, कुरान तो कुरान ही है, अल्लाह ने तुम्हें सही कुरान से मुनासबत नसीब फरमाया है। कुरान ही नहीं पढ़ते, बाकी सब पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। कमथली गईसिन अजबल कुफारा नबात हो सुम यहीज फतराहु मुस्फर्रन सुम यकून हुतामा, कि ये खेल तमाशे, फैशन, फख्र गुरूर के नारे और औलाद और कसरत और माल की कसरत, ये सब ऐसा है जैसे बारिश का पानी। जब बारिश बरसती है तो काशकार को एक खुशी की लहर दौड़ती है, खुश हो जाता है काशकार। कमथल गईसिन अजबल कुफार नबात हो, कि काशकार जब बीज डालकर फारिग होता है तो हर वक्त उसकी नजर आसमान की तरफ होती है, आज बरसे, कल बरसे, अब बरसे, तब बरसे। जब बारिश बरसती है और उसका डाला हुआ बीज उग आता है तो बाछें खिल जाती है, खुश हो जाता है। कमसरी गईसिन अजबल कुफारा नबात हो, जब बीज कौपल की शक्ल में बाहर आ जाता है तो काशकार खुश हो जाता है। नहीं क्या, आदमी ने खेला भी, तमाशे भी किए और कमाया भी, अब शादी हुई, क्योंकि शादी के बाद पहली तमन्ना मर्द की भी और औरत की कि हम साहिब औलाद हो जाएं। मियां बीवी की मुलाकात में अगर हमल करार पा गया तो लड़की सहेलियों में, लड़का साथियों में, दोस्तों में तस्कीरें करता है कि उम्मीद है, उम्मीद है। और जिस दिन बच्चा पैदा होता है तो जैसे काशकार को डाले हुए बीज के उगने पर खुशी, इस मां बाप को और पूरे खानदान के खुशी कि अल्लाह ने हमें कोई कहता पोता दिया, कोई कहता अल्लाह ने नवासा दिया, कोई कहता भांजा दिया, कोई कहता भतीजा दिया, कोई कहता है बेटा दिया, कोई कहता, हर एक के रिश्ते होते हैं कि ये बहुत मासूम, जैसे वो बीज की कौपल कितनी मासूम होती है, कैसी कमजोर होती है, बहुत महीन बहुत बारीक। सुम्म यहीज, ये कौपल आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है, पौधे की शक्ल इख्तियार करती है। अब उस पर पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। और जब ये पौधा बढ़ता है और चारों तरफ उसके पत्ते होते हैं, फिर उस पर ठंडी भीनी हवाएं चलती है। तो दरख्तों के पत्ते जब आपस में टकराते हैं ना, तो एक बहुत शानदार आवाज होती है, है? सन से एक आवाज होती है पूरे खेत में, और यूं बिल्कुल सीधा जाता है। क्योंकि ये जवान जो गलियों से गुजर रहा है, जो मोहल्लों में चल रहा है, जो टक टक की आवाज वाली जूती से चलता है, देखा होगा खेत में कभी पूर्वा हवा चलती है तो पूरे खेत पूरब की तरफ, और कभी पछवा हवाएं चलती है तो पूरा खेत पश्चिम की तरफ। क्योंकि ये जवान कभी जुल्फें इधर लाता है, कभी जुल्फें उधर ले जाता है, कभी आगे लाता है, कभी पीछे ले जाता है। जवानी में सुम्म यहीज, एक हैजान की शक्ल, ऐसा सीधा जाता है, बाप को बाप मानने को तैयार नहीं, मोहल्ले के किसी बड़े का इकराम और एहतराम करने को तैयार नहीं, किसी को लिफ्ट देने को तैयार नहीं। आई एम सीधा, कि ये कौन है कि वो जो इतना सा पैदा हुआ था एक बालिश का, अंधेरे में अगर कभी पैर पड़ जाता तो आंते बाहर आ जाती नहीं। अब ये हैजान में है कि हम पे जवानी आई है, हम पे जवानी आई है, हम पे दौलत आई है, हम पे ओहदा आया है, हम पे शान आई है, हम पे कारोबार आया है। मल फखर इब्ने आदम खुलक मिन तुराब थुम्म इला तुराब यऊद, कि आदम के बच्चे को फख्र गुरूर करने का हक क्या है, ये तो मट्टी से बना है, मट्टी हो जाएगा। लेकिन हकीकत अपनी भूल जाता है। हलता अल इंसान हीन मिन الدهر لم يكن شيئا مذكورا इन्ना खलकना इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा, कि आदमी तो एक काबिल तज़किरा चीज नहीं था कि जिसका तज़किरा किया जाए, ऐसे गंदे पानी से बना। लेकिन अब ये अपनी हकीकत भूल जाता है कि जैसे ये बीज जो जमीन में डाला गया, कितनी मट्टी, कितना खाद, कितना ट्रैक्टरों से और बैलों से रौंदा गया, अब कौपल की शक्ल में बाहर आया। कि अब जब बच्चा पैदा हुआ, मिठाइयां तकसीम हो रही है, खुशियां मनाई जा रही है, कि भाई शादी की थी, अल्लाह ने साहिब औलाद बना दिया, अब ये औलाद बढ़ रही है, ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, घरों में लड़कियां, जवान बच्चे, लड़के जवान हो रहे हैं, इनकी तालीम, इनकी तरबियत, इनको सिखाना जब नहीं होता है तो इनमें एक हैजान की शक्ल पैदा हो जाती, जिसको नशा कहते हैं, एक नशा, जवानी का नशा। नशे बहुत होते हैं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि एक होता है दौलत का नशा, एक होता है हुकूमत का नशा, एक होता है इल्म का नशा। यानी कि ये नशे, ये दौलतें ऐसी है, ये चीजें ऐसी है, हर एक को हजम नहीं होती, दौलत हर एक को हजम नहीं होती, ओहदा हर एक को हजम नहीं होता। अना रब्बुकुमुल आला कहा था ना फिरौन ने, ओहदे ही के घमंड में कहा था कि मैं हूं तुम्हारा बड़ा परवरदिगार। कारून ने दौलत के नशे में कहा था इन्नमा उती तू आला आजमिन इंदी, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इसको वहां खर्च कर जहां से तेरी आखिरत बने, आ जाओ जो मेरा अपना है। कारून का नारा दौलत का नशा, फिरौन का नारा मुल्क का और हुकूमत का और ओहदे का नशा, क्योंकि एक नशा होता है इल्म का, कि इल्म अपनी जगह बहुत पाक और साफ चीज है, लेकिन जब इल्म का मसरफ सही नहीं होता है तो ये घमंड गुरूर और नशा पैदा कर देता है। जैसे अंगूर, अंगूर बहुत पाकीजा चीज है, अंगूर कैसी बहुत शानदार चीज है, शराब किससे बनती है, है? और शुगर का ही से बनती है, अंगूर से शुगर बनती नहीं बनती है। और मिठाइयां किससे बनती है, मिठाइयों में शुगर होती है, है? कि जैसे गन्ने में शुगर है ऐसे ग्रेप्स और क्या अंगूर में, इसमें भी कि अगर सही इस्तेमाल हो तो मिठाइयों में और हर वैरायटी में इस्तेमाल होती है, अगर सही इस्तेमाल ना हो और अंगूर सड़ जाए तो फिर नशा पैदा कर देती है। अपनी जात से अंगूर बहुत पाकीजा चीज, यूं क्या इल्म है बहुत बड़ी दौलत, लेकिन अगर अपने मशरफ पर हो तो ये खुदा से मिला देती है, और अगर इल्म अपने मशरफ पर न हो तो नशा पैदा करती है, पागल बना देती है, दावेदार बना देती है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तीन नशे ऐसे हैं, तीन चीजें ऐसी है जिसका नशा आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा देता। सुम्म यहीज, ये जवानी दीवानी, जवानी दीवानी। हकीम अजमल खान ने लिखा है अशबाब जुनून, अशबाब जुनून वलील जुनून फुनून अकल्लुहा सबून, अशबाब जुनून वलील जुनून फुनून व अकल्लुहा सबून। जवानी दीवानी, अदीवानगी यूं के कम से कम 70 तरह की, कम से कम 70 तरह की दीवानगी। इसीलिए अंबियाए किराम और रसूल इजाम अलैहिम सलात व तस्लीमात की मेहनत पहले दिन से इंसान की कुव्वत को, इंसान की इस्तेदाद को, इंसान की सलाहियत को सही ठिकाने लगाना, ये हर नबी की मेहनत का खुलासा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेहनत इसकी। हुजूर जब तशरीफ लाए तो लोगों की मेहनत, लोगों की सलाहियतें, लोगों की कुव्वतें लोहे पर, लकड़ी पर, जंगों पर, लड़ाइयों पर, तलवारों पर, शराब के जामों पर, इसी पर सारी ताकत लग रही थी। लिखा है उलमा ने कि 300 से ज्यादा किस्म के नाम मिलते हैं, 300 से ज्यादा नाम मिलते हैं शराब के अरबी लुगत में। अंगूर की शराब का नाम और है, खजूर की शराब का नाम और है, जौ की शराब का नाम और है, जाम भरते भरते छलक जाए तो नाम और है, अधूरा रह जाए तो और है, जाम से जाम टकरा जाए तो नाम और है, डांसिंग हॉलों में होता है ना, 300 से ज्यादा नाम मिलते हैं अरबी। और एक मस्ती, न हलाल हराम, खुदा रसूल, कोई चीज ही नहीं, एक नशे की जिंदगी थी जब हुजूर तशरीफ लाए, और सारी ताकत इस पर लग रही थी, सारी ताकत इस पर लग रही थी। दो खानदानों में लड़ाई थी मदीने में, जिसको यसरीब कहते हैं, हुजूर की बिरासत से पहले 120 साल से लड़ाई चली आ रही थी औस खजरज में, और 120 साल में दोनों खानदानों का बेहद हिसाब खून बह चुका था, कितने जवान, कितनी मालियत, कितनी दौलत तबाह हो चुकी थी, और कोई सॉल्यूशन नहीं था, किसी तरह की कोई सुलह की शक्ल नहीं थी। इसी पर सब हो रहा था, जंगों पर, शराबों पर, तलवारों पर, शेर शायरी पर, और पानी के चश्मों पर, बस इसी पर सारी ताकत लग रही थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आकर के इनको बताया कि तुम्हारी सलाहियत के लगने की जगह क्या है। یہ اصل جگہ نہیں ہے تمہاری محنت کی، تمہاری محنت کا میدان اور تمہاری صلاحیتوں کے کھپنے کا میدان وہ تو توحید ہے اور رسالت ہے اور آخرت ہے، کہ ایمان بنانے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی جینے اور آپ کی تابع داری کرنے پر، اور آخرت جو اصل ہے جہاں جانا ہے ہر ایک کو، کہ جتنے چاہے اچھل لو جتنے چاہے کود لو مرنا ضرور ہے. اس لیے جو میں نے آیت پڑھی تھی ثم یہیج فتراہ مسفرن، تھوڑے دنوں کے بعد یہ پودا جو کل کو کوپل تھی اب پودا ہوا، ہیجان اور جوان ہوا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، کبھی یہ محلہ کبھی وہ محلہ، اپنی جوانی دکھا رہا ہے. فتراہ مسفرن، تھوڑے دنوں کے بعد اس کے پتے پیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. درخت کے پتے پیلے ہوتے ہیں نہیں، کیا آدمی کے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں؟ کیا الارام ہے، گھنٹی بجتی ہے نا، الارام بجتی ہے نا، کہ الارام ہے کہ بہت اچھل رہے تھے کیا، پرسنالٹی کیا کہتے ہیں، پرسنالٹی، اور کیا کہتے ہیں وہ آج کل ایک اسمارٹ، کیا کہتے ہیں اسمارٹ، ویری اسمارٹ، یہ وہ ہیں اسمارٹ جن کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے، کچھ سر کے کچھ داڑھی کے کچھ بھووں کے. فتراہ مسفرن، پیلے پڑنے شروع ہو گئے درخت کے پتے. ثم یکون حطاما، یہ کوپل یہ پودا یہ جوانی یہ ہیجان اب پتے پیلے پڑ گئے. ایک پتجھڑ کی ہوا، ایک موسم آتا ہے نا جس میں پتے گرتے ہیں درختوں کے، وہ ہوا چلی تو سارے پتے نیچے. کہ کیا ہوا، کہ جو بہت اچھل اچھل کے چلا کرتے تھے، زمین پر پیر نہیں رکھتے تھے، کسی کو شمار بھی نہیں لاتے تھے، آئی ایم مین، کیا کہتے ہیں، آئی ایم مین، آئی ایم سم تھنگ، وہ اب نیچے ہیں. کہ آج ان کا جنازہ ہے، آج کیا ہے، اعلان ہے آج فلاں کا انتقال ہو گیا. فتراہ مسفرن ثم یکون حطاما وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، کہ اب یہاں سے دو راستے الگ الگ ہیں، آخرت میں عذاب شدید بھی ہے اور مغفرت بھی ہے، کہ جس راستے کی کر کے گئے ہیں اس راستے پر جائیں گے. کہ اگر خالص اپنی تمام طاقت تمام صلاحیت تمام استعداد صرف کھیل تماشا فیشن فخر و غرور اور مال اولاد کی کثرت اسی پر تمام طاقت لگائی ہے تو فی الآخر عذاب شدید، اور اگر ان میں رہتے ہوئے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی چھوڑ دے سب کھانا پینا بیوی بچے، آدمی ہیں ہم، کوئی فرشتے تھوڑے، کمائیں گے بھی خرچ بھی کریں گے شادی بھی کریں گے بچے بھی ہوں گے سب کچھ کریں گے. ان میں رہتے ہوئے آخرت کے پانچ سوالوں کی اگر تیاری کی، کہ بھائی پانچ دن ملے ہیں، یہ ساری پانچ دنوں کا کھیل ہے، اصل تو وہ ہیں پانچ سوال، کہ کما بھی رہے ہیں خرچ بھی کر رہے ہیں شادی بھی کر رہے ہیں بچے بھی ہیں، لیکن کہ بھائی ہر منٹ کا جواب دینا پڑے گا، یہ کہاں لگایا، یہ جوانی کیسی گزر رہی ہے، گھر میں کیا آ رہا ہے، گھر سے کیا جا رہا ہے، حلال کتنا آ رہا ہے، حرام کتنا آ رہا ہے. حلال اور حرام کی روزی کے بڑے بڑے اثرات ہوتے ہیں. اللہ اکبر، ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک بیوہ عورت تھی، ایک بیوہ عورت تھی، اس کے دو بچے تھے، یتیم تھے. ماں اپنی بیچاری گھر میں محنت مزدوری کی، حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھی. یہ بچے نماز کے وقت مسجد میں جاتے، اب بچوں کو تو کوئی بھی کھیل چاہیے، تو یہ بچے جہاں مسلیوں کے جوتے اترتے تھے وہاں کھیلتے تھے دونوں بھائی. اور ان کا کھیل کیا تھا، وہ جوتوں کی تقسیم کرتے تھے، یہ جنتی کا یہ دوزخی کا، یہ جنتی کا یہ دوزخی کا، جوتے ایسے تقسیم، یہ کھیلتے تھے. لوگوں کو بہت تعجب ہوا، ابھی یہ کس کے ہیں، یہ کوئی کھیل ہے،
भाग जाओ,
थोड़े भाग गए, फिर नमाज खड़ी हुई, फिर आए, ये जन्नती का, ये दोजखी का, ये जन्नती का। एक आदमी था मुसल्लियों में, उसने कहा कि देखो बच्चे की बात ये है कि अगर जिद पर आ जाएगा तो जितना तुम मना करोगे इतना ये करेगा, जितना तुम। तीन आदमियों की जिद मशहूर है ना, तीन की जिद बहुत मशहूर है, बालहट, तिरियाहट और राजहट। ये तीन हटें और तीन सीधे बहुत मशहूर है, याद रखना। बालहट बच्चे की जिद, तिरियाहट औरत की जिद, और राजहट हुकूमत की जिद। हुकूमत अगर जिद पर आ जाए, नहीं, माय ऑर्डर, माय शिप, माय ऑर्डर। ऐसे औरत अगर जिद पर आ जाए और ऐसे बच्चा जिद पर आ जाए। इसीलिए यूं कि जब कोई जिद पर अड़ जाता है तो बड़ी बड़ी खैर से महरूम हो जाता है। ये अबू जहल, अबू लहब, रुतबा, शैबा, ये सब अपनी जिद में मारे गए। अखनस इब्ने शुरैक मुनाफिकीन का सरदार था, एक अखनस इब्ने शुरैक, ये अबू जहल, अबू लहब वगैरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाना, आपके लिए आपके खिलाफ स्कीमें बनाना, जो मक्के में आवे उनको रोकना, खबरदार इनकी बात मत सुनना, ये हो। लेकिन हक जो है ना, हक, अल हक को यालू वला याला, हक बुलंद ही होके रहता है, झुकता नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते थे तो दिल खींचते थे, तो ये अबू जहल, अबू सुफियान और ये सब चुपके से अंधेरे में जाते और किसी दीवार की आड़ में खड़े होकर रात भर कुरान सुनते। जब उजाला हो जाता तो भाग आते जल्दी से, कोई देख न ले। एक दिन रास्ते में मिल गया अखनस इब्ने शुरैक, का कहां गए थे? नहीं, वो आदमी के पास जब जवाब नहीं होता है तो आया करता है, याद रखना, अभी तश्किल में ऐसा होगा, याद रखना। मदरसे में आपने देखा होगा, बच्चे ने देखा कि उस्ताद कुछ लिख रहे हैं, देख नहीं रहे, चुपके से चला गया। अब जब आया तो देखा, कहां गया? तो वो उस्ताद समझ गया कि ये कोई जवाब बना रहा है, और अगर किसी बच्चे को पेशाब आ रहा था सचमुच और उस्ताद मशगूल थे, और उसने देखा कि अब अगर खड़ा रहूंगा तो कपड़े खराब हो जाएंगे, वो जल्दी चला गया। अब आया, पूछा कहां गया था? पेशाब करने गया था, इसलिए कि वो हक है, अब वो उसको खुजाने की जरूरत नहीं। चार महीने के नाम लिखवाने के वक्त आदमी जब खुजाता है ना कि वो मौल साहब, वो मैं तो मेरा इरादा है, मेरा भी है, ये जो थूक निकलता है और इधर उधर की करता है ना, वो समझता है कुछ कुछ कर रहा है, अंदर है नहीं, इसलिए जरा चौकन्ने रही, अब ऐसा मत करिए। तो अखनस इब्ने शुरैक ने पूछा कि सच सच बताओ तुम आ कहां से रहे हो? भाई क्या करें, वो रोज ऐलान होता है, बयान होगा, बयान होगा, तो बैठ गए थे, चार महीने चला गया मैं तो। उसने कहा अबू जहल ने कि बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते हैं तो जिल खींचता है, तो मैं कुरान सुनने गया था, तो इसने यूं कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? दिन भर तो तुम उनकी मुखालफत करते हो, जो मक्के में किसी रास्ते से आता है उसको भी कहते हो खबरदार इसकी बात मत सुनना, और रात को अंधेरे में तुम ये करते हो, तो अगर तुम्हारी पब्लिक को पता चलेगा तो पब्लिक तुम्हारे पर थूकेगी नहीं? अरे हाँ यार, वो क्या करें, बस नहीं रहा गया, अच्छा अच्छा आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बहुत कसमें खाई। लेकिन कुरान अपने में कशिश रखता है, कुरान अपने में कशिश रखता है। अल्लाह हमें कुरान से मुनासिबत नसीब फरमा दे। دوسرے دن پھر یہ واقعہ پیش آیا. پھر اس نے کہا کہ تم نے کل تو منع کیا تھا کہ اب نہیں جاؤں گا. ارے بھائی کیا کریں, تین مرتبہ اس نے ان کو پکڑا. اس نے کہا کہ بات بات اندر کی کیا ہے وہ ذرا معلوم کرنی چاہیے. کہا یوں راستے میں تو یہ بتائیں گے نہیں, ذرا گھر جا کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے جب بات کرتے ہیں نا تو اچھی بات ہوتی ہے. تو گھر گیا, سچ سچ بتا دو تمہاری کیا رائے. اس نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں جیسا وہ کہہ رہے ہیں, اور جو کچھ وہ پڑھ کر سناتے ہیں وہ اللہ ہی کا کلام ہے, نہ کسی شاعر کا نہ کسی ساحر کا, پکی بات ہے. تو اس نے کہا کہ پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو, ان کو رسول مان لو, قرآن کو اللہ کی کتاب مان لو. تو اس نے یوں کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اور ان کے خاندان کا مقابلہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہم بڑے باپ کے, وہی ہم کہتے ہم بڑے باپ کے, دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے, اور ابھی تک مقابلے میں دونوں بالکل برابر برابر ہیں. اگر حاجیوں کو پانی پلانا, حرم کی خدمت کرنا, اس کے لیے انہوں نے اپنے جوان دیے تو ہم نے بھی اپنے جوان پیش کیے کہ تمہارے پاس ہے تو ہمارے بھی لے لو. کسی جنگ کے موقع پر اگر انہوں نے اپنے بہادروں کو پیش کیا تو ہم نے کہا کہ ہم بھی کوئی مرے مرائے نہیں ہیں, ہمارے پاس بھی. تو ابھی تک جو مقابلہ چل رہا ہے وہ بالکل برابر برابر کا چل رہا ہے. اب اگر ہم ان کو نبی مان لیں تو ہم نبی کہاں سے لائیں گے, نبی تو اللہ پاک بھیجتے ہیں. تو اگر ہم ان کو نبی مان لیں تو ہمارے پاس کوئی نہیں, تو یہ کٹ جائے گی, ہماری ناک کٹ جائے گی. اس ضد میں اور ناک کی پچ میں محروم گئے ہمیشہ کی جہنم میں. یاد رکھنا دوستو, چاہے خاندان کی بات ہو, چاہے سماج کی بات ہو, چاہے علاقے کی بات ہو, حق بات کے سامنے آدمی کو گردن رکھ دینی چاہیے, اس سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا. اور اگر آدمی اپنی ضد پر اڑا رہا تو بہت بڑی بڑی بھلائیوں سے, بڑی بڑی خیروں سے محروم جاتا ہے دنیا سے. اور وہ خالی محروم نہیں جاتا, اس کی اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. فتراہ مسفرن ثم یکون حطاما وفی الاخرت عذاب شدید. اگر تمام توانائی, تمام طاقت, تمام انرجی, تمام استعداد و صلاحیت صرف انہی پانچ چیزوں پر لگا دی ہے تو مرتے ہی راستہ عذاب شدید کا ہے, سکرات بھی اور قبر بھی اور آخرت بھی. اور اگر ان میں رہتے ہوئے کہ انسان ہیں, بشر ہیں, بیوی بچے کھانا کمانا آدمی کی ضرورت ہے, ان میں رہتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھا, بھی اپنی آخرت نہ بگڑے. اس پر میں سنا رہا تھا کہ وہ دونوں بچے جو تھے مسجد میں آتے اور یہی کھیل کھیلتے. اب جتنا ان کو بھگاتے اتنا ان کو اور اصرار ہوتا اپنی بات پر. ایک آدمی تھا سمجھدار, کہا جتنا روکو گے, جتنا ڈانٹو گے اتنا یہ بچے ہوتے نا پھر چلاتے ہیں, دانت دکھاتے ہیں, انگوٹھا دکھاتے ہیں دور جا کر کے, بچے چڑھاتے ہیں. تو ایک آدمی سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ جتنا ان کو روکو گے اتنا یہ اور چڑھائیں گے اور آئیں گے, یہ راستہ نہیں ہے, ان کے لیے دوسرا راستہ اپنا ہو. ساتھ لے گئے نماز کے بعد اپنے, آؤ بیٹھو, گھر میں لے گئے, پانی پلایا, چاکلیٹ دیے, ٹافی دی, جیب میں بھر دی, ہاتھ دیے, خوش بچے, خوش بچوں کو کیا چاہیے, چلے گئے. معلوم ہوا کہ اب وہ کھیلنے نہیں آتے ہیں. تو یہ آدمی خالی اتنا نہیں کہ بھئی چلو بلا ٹلی, یہ بات نہیں, تحقیق میں لگ گیا, कि ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या बात थी कि बच्चे आते थे अब नहीं आते। तो पूछते पूछते उनके घर पहुंचा, भई ये बच्चे आपके हैं। तो उनकी बेवा मां ने कहा कि हाँ मेरे बच्चे, कि ये क्या खेल आपने सिखाया अपने बच्चों को और अब नहीं खेलते हैं। कहा मैंने नहीं सिखाया है, मेरे हलाल की कमाई और मेहनत मजदूरी की हलाल के लुकमे ने इनके अंदर जो नूरानियत पैदा की है उसका यह असर है कि उन्हें अंदर की आंखों से दिख रहा है किसकी राह जन्नत की है और किसकी दोजख की है। लेकिन तुम जो अपने घर ले गए और तुमने मेरे बच्चों को अपना लुकमा खिलाया हराम का, तो मेरे बच्चों की ईमानी नूरानियत खत्म हो गई। याद रखना, खाली अच्छे अच्छे खा लेना और अच्छी अच्छी डिशें और अच्छी अच्छी वेराइटियां, ये कमाल की बात नहीं। ये देखो कि घर में आ कहां से रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, सूद के रास्ते से, झूठ के रास्ते से, गबन के रास्ते से, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से। अनमाल ही मिन अइन कसबहू वफीमा अनफक, माल की कमाई की शक्लें क्या है, और अगर सारे शराइत के साथ हलाल की कमाई है तो फिर ये देखो कि खर्च कहां हो रहा है। अल्लाह के हुक्मों के पूरा होने में जो हकूक है एक दूसरे के, उसके अदा करने में कितना खर्च हो रहा है, और अपनी मनमानी और अपनी हवा व हविस और अपनी ख्वाहिशात के पूरा करने पर कितना खर्च हो रहा है, ये देखो कि इसका जवाब देना है। वफिल आखिरत अज़ाब शदीद व मग़फ़िरत मिन अल्लाह व रिज़वान, कि अगर इन पांच अपनी ताकत और सलाहियत को इन पांच चीजों में रहते हुए, कि भाई इंसान है, बीवी भी होगी, बच्चे भी होंगे, कारोबार भी होंगे, लेकिन जैसे कुरान ने उनकी तारीफ की है, रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ाम अस्सलात व ईता अज़्ज़का यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, कि कुछ मां के जने और कुछ सपूत ऐसे होते हैं कि लाखों की मालियात के ढेर में लाखों की उलट फेर कर रहे हैं, लेकिन दिल उनका आखिरत की तरफ, ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ाम अस्सलाह व ईता अज़्ज़का यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, कि उनकी मशगूलियतें, उनका बिजी होना, उनका मशगूल होना, उनका मसरूफ होना, उन्हें अल्लाह के इस्तेहजार से, जिक्र के माने समझो, जिक्र के माने खाली तस्बीह के दाने गिनना नहीं, हां याद रखना, एक है अल्लाह को याद करना और एक है अल्लाह को याद रखना, समझे। जिक्र से जो मतलूब है और जो मकसूद है वो सिर्फ अल्लाह को याद कर लेना नहीं, जो याद करता है ना अल्लाह को वो मस्जिद में तस्बीह पढ़ते हुए रोता भी है और धुरधुरी भी आती है, बहुत नूर दिखता है, लेकिन याद किया है, मस्जिद से बाहर निकलते ही भूल जाता है, इसलिए याद किया था। इसलिए याद करना असल नहीं है, याद रखना असल है। क्या आदमी सड़क पे जा रहा है, सामने से खूबसूरत लड़की आ रही है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, कोई मौका आया सिग्नेचर कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा, मेरा अल्लाह देख रहा है, गलत सिग्नेचर नहीं कर सकता हूं, ये चीज मैं नहीं ले सकता हूं, ये मैं नहीं खा सकता हूं, ये मैं नहीं पी सकता हूं, मेरा अल्लाह देख रहा है। जिक्र से जिंदगी के 24 घंटे की जो जिंदगी है, घर, कारोबार और समाज, अंधेरे उजाले, हर हाल में अल्लाह का ध्यान, अल्लाह समीअ है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अगर इन चार सिफात का इस्तेहदार और इसका यकीन हो जाए, देखो एक है जानना, एक है जानना और एक है मानना। जानते हम सब हैं, अल्लाह देखता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह को सब खबर है, कहते नहीं कहते? एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी कहता है कि वो आलिम है, वो खबीर है, वो समीअ है, वो बसीर है, कि अल्लाह देखता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह जानता है, हैं? उसको सब खबर है, कहते नहीं कहते? लेकिन यकीन कितना है, यकीन कितना है, इसका अंदाजा कब लगता है? दो आदमी बैठकर गीबत कर रहे हैं, दो आदमी बैठकर गीबत कर रहे हैं और दाएं बाएं देख रहे हैं, कहां ठीक है हमारी बात कोई नहीं सुनता है, खूब मजे ले लेके एक दूसरे की गर्दन नापते, कि बंद कमरे में गीबत कर रहे थे, किसी के चलने की आवाज, या सुराख में से कोई बच्चा देख रहा है या सुन रहा है, दोनों स्टॉप, वो सुन रहा है, एक आदमी जा रहा है, वो सुन रहा है हमारी बात, फौरन चुप, कि जब वो आदमी नहीं सुन रहा था तो अल्लाह नहीं सुन रहा था, हैं? लेकिन आदमी के सुनना होना जितना यकीन है, इतना भी अल्लाह समीअ है यह यकीन नहीं है। अगर अल्लाह के, इसलिए अल्लाह समीअ है, जानते सब हैं, अल्लाह बसीर है, जानते सब हैं, लेकिन अगर दो आदमी कोई बदकारी, दो मर्द औरत कोई बदकारी कर रहे हों और ये सोच करके कोई नहीं देखता, और ये अंदाज हो जाए कि सुराख में से कोई बच्चा देख रहा है, कि जब ये नहीं देख रहा था जब भी अल्लाह तो देख रहे थे, कि अल्लाह बसीर है, अल्लाह समीअ है, जानते सब हैं, लेकिन यकीन के अतिबार से इतना ईमान भी और इतना यकीन भी खुदा की सिफात पर नहीं है जितना एक आदमी की सिफत पर यकीन है। इसलिए कहते ना, कलमा सीखो, कलमा सीखो, तो यूं ही नहीं है कलमा सीखो, कि कलमा जानते सब हैं, बहुत शानदार लहजे पढ़ते हैं, दाएं से ला करके बाएं डालते हैं, है? आवाज भी बहुत सुरीली होती है, जर भी शानदार लगती है, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है, ये देखो कि अंदर उतरा है कि नहीं। अल्लाह रज़्ज़ाक है, अल्लाह हफीज है, अल्लाह मानिअ है, अल्लाह मुइज है, अल्लाह मुजिल है, अल्लाह मुही है, अल्लाह मुमीत है, अल्लाह फजल वाले भी हैं और अल्लाह पकड़ वाले भी हैं, कि अल्लाह की जात और सिफात का यकीन दिल में उतरना। इसीलिए जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का ऐलान हुआ और चारों तरफ खबर फैली कि नबी ये मुंतजर, नबी आखिर जमान तशरीफ ले आए, तो गांव वाले ने कहा भाई चलो फिर, तो गांव के लोग मदीने के अतराफ से आए और आते ही हुजूर की खिदमत में बैठ के कहने लगे आमन्ना, हम ईमान ले आए। कालतिल अराबो आमन्ना, गांव वालों ने, देहातियों ने कहा कि हम तो ईमान ले आए। फौरन जिब्रील उतरे, कुल ला तुमिनू वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, प्यारे नबी जी इनसे कह दीजिए कि अभी ईमान नहीं लाए हो, यूं कहो मुसलमान हो गए, अभी ईमान दिल की गहराइयों में नहीं उतरा है, कि जब ईमान अपनी जगह पर पहुंच जाता है तो उसका जुहूर जिंदगी के शौबों में होता है। ईमान क्या करता है, कि ईमान के साथ कितने वादे हैं कुरान के, कि ईमान पर आसमानी कुदसी ताकतें जमीन पर आती है, ईमान पर अमन आता है, इन अल्लदीन आमनु वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइक लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून, इन अल्लदीन आमनु वअमिलुस सालिहाति उलाइक हुम खैरुल बरिया, इन अल्लदीन आमनु वअमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, इन अल्लदीन आमनु वअमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ला, के दुनिया के भी वलिल्लाहिल इज्जत वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, ईमान के, ईमान के साथ बड़े वादे हैं दुनिया के भी और आखिरत के भी, अमन के, इज्जत के, बरकतों के, کہ اس کا ظہور جب ہوتا ہے جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے. کہ ایمان کی اصلی جگہ جو ہے وہ آدمی کا دل ہے. کہ ما وقر فی القلب الایمان, ما وقر فی القلب وصدقہ العمل, کہ جو دل کے دل بھیتر بیٹھ جائے اور 24 گھنٹے کی زندگی کی تمام نقل و حرکت اس کی تصدیق کرے. یہ بول ایمان والے کا ہے, یہ نظر ایمان والے کی ہے, یہ گھر ایمان والے کا ہے, یہ لباس ایمان والے کا ہے, یہ کاروبار ایمان والے کا ہے, یہ شادی ایمان والے کی ہے. کہ اس کے کھانے پینے, شادی بیاہ, غم خوشی, ہر چیز وہ بتا رہی ہو کہ ایمان والے کی زندگی ایسی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان. ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا بھی کرتے تھے کہ تم دعوے تو بہت کرتے ہو کہ میرے پاس ایمان ہے, میرے پاس ایمان ہے, دعوے کی دلیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, دیکھا حضرت حارثہ سو رہے ہیں تو حضور نے ان کو ٹھوکر سے جگایا اور جگاتے یوں پوچھا, کیف اصبحت یا حارثہ, صبح کیسے ہوئی تمہاری؟ تو انہوں نے برجستہ کہا, اصبحت مؤمنا حقا, اللہ کے رسول میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے. تو حضور نے, یہ تو تمہارا اپنا دعویٰ ہے, یہ تو تمہارا اپنا دعویٰ ہے کہ میں ایمان کی حقیقت کے ساتھ ہوں, دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ دعویٰ کوئی بھی دلیل کے بغیر نہیں مانا جاتا. بغیر دلیل کے دعوے ہوں تو دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے. راستے چلتے ہوئے کوئی یوں کہے مکان میرا ہے, گاڑی میری ہے, کاروبار میرا ہے, چھٹی ہے, فوراً پیپر مانگتے ہیں, پیپر ہے نہیں. یوں کہنا کہ میں نے ایمان کے ساتھ صبح کی, یہ تو تمہارا اپنا دعویٰ ہے, دلیل کیا ہے؟ یوں کہا, اللہ کے رسول 24 گھنٹے اس طرح گزرتے ہیں کہ ہر وقت یہ خیال رہتا ہے ادھر جنت ہے ادھر دوزخ. حق تعالی شانہ کے عرش کے سامنے میں کھڑا ہوں اور ہر وقت یہ خیال ہے کہ میری پلک پلک کا مجھے جواب دینا ہے. حضور نے فرمایا, عرفت فلزم, ہاں تجھے ایمان کی حقیقت نصیب ہو گئی, لیکن یاد رکھنا چمٹے رہیو, اسے لگے رہیو. ایمان بہت غیور ہے, ذرا سے میں نکل جاتا ہے, اس لیے اس ایمان کی حفاظت کرتے رہے. حضرت حارثہ کے واقعے نے ہماری رہبری کر دی کہ کھاتے پیتے کماتے غم خوشی رات دن سفر حضر مالداری غربت ہر حال میں اس استحضار کے ساتھ کی زندگی, اس کا نام ہے ایمان, اس کا نام ہے ایمان. اس لیے میں نے کہا تھا, میں نے کہا ذکر کے معنی خالی اللہ کو یاد کرنا نہیں, اس ذکر کے ذریعے اتنا استحضار ہو جائے اللہ کی ذات و صفات کا کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے, اور راضی ہو گیا تو اس کے خزانے بھرپور ہے, پھر اتنا دے گا کہ لیتے تھک جائیں گے. تو عرض میں نے کیا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ 5 دن کی زندگی ہے, 5 چیزیں دنیا کا خلاصہ ہے, اور 5 سوالوں کے جواب ہر ایک کو دینے ہیں. تیاری اس کی یہی کرنی ہے, آگے کسی کے پاس تیاری کا وقت نہیں ہے. اور اس تیاری کے لیے نمبر بھی 5 دیے کہ ان 5 راستوں سے تیاری کر لو, ایمان بنا لو, نماز بنا لو, دین سیکھ لو, اللہ کا دھیان پیدا کر لو, ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر ادا کر لو, اور اللہ کو راضی کر لو, چھٹی ہو جاوے گی, کام بن جائیں گے. یوں کہ 4 مہینے اور چلے جو مانگتے ہیں وہ اسی کے لیے مانگتے ہیں کہ آدمی اپنے ماحول سے نکل کر 4 مہینے اس طرح کے جس میں خالص ٹھوس اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کے غیر میں نہ نفع ہے نہ نقصان, عزت ہے نہ ذلت, اللہ ہی سب کچھ کرنے والے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہی میں کامیابی ہے, یہ یقین کہ اتنا بولیں اتنا سنیں اتنا سوچیں, اتنا بولیں اتنا سنیں اتنا سوچیں کہ بن دیکھے اس کا یقین ہو جائے. जैसे दुनिया के बहुत सारे मुल्क हमने नहीं देखे, बहुत से अमेरिका नहीं गए होंगे, क्यों भाई, बहुत से जापान नहीं गए होंगे, लेकिन जापान दुनिया में कोई मुल्क है इसका यकीन है कि नहीं है? इस पूरे मजमे में कोई आदमी ऐसा है जो यूं कहना ही बे जापान है ही नहीं, कोई कह सकता? अरे अमेरिका है ही नहीं, पहले था, कोई कह सकता? जो नहीं गए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, उनको भी यकीन है कि अमेरिका है, जापान है। यूं कि अल्लाह के गैबी निजाम को, और जिसको नबियों ने जिसकी खबरें दी है, जो आंखों से नजर नहीं आती है, जन्नत हक है, दोजख हक है, अजाब कब्र सवाब हक है, अल्लाह और उसकी सिफात हक है, इसको बिन देखे जितना इन चीजों को देखा नहीं है और यकीन है, उससे ज्यादा यकीन उतर जाए दिलों में कि ये कैसे उतरा कि दुनिया ने जापान 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 इतना बोला इतना बोला कि बच्चे बच्चे को यकीन हो गया कि हां जापान कोई जगह है। ठीक है, अल्लाह की बड़ाई को, आखिरत को, जन्नत को, दोजख को, सहाबा के वाकयात को, अंबिया किराम के वाकयात, इतना बोलो इतना बोलो, घरों में, बच्चों में, औरतों में, मार्केटों में, बाजारों में, मस्जिदों में, सड़कों में, इतना बोलो कि दुनिया में हर एक की जबान पर अल्लाह हक, आखिरत हक आ जाए, ईमान की दौलत मिल जाए। अभी हम बहुत कच्चे हैं ईमान, क्योंकि इसीलिए ये पांच नंबर हैं कि सबसे पहले कलमा सीखो, और क्योंकि हम अल्लाह के हैं, इसकी दलील कि उसके सामने झुके हुए हैं, नमाज उसका सबूत है, बंदगी का सबूत है कि हम तो तेरे हैं, हमने तुझे मान लिया। लेकिन कलमा भी और नमाज भी, क्योंकि बगैर इल्म के, बगैर इल्म का कलमा सही नहीं हो सकता, बगैर इल्म के नमाज सही नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कलमे नमाज को लेकर इल्मे इलाही और जिक्रे इलाही के साथ मखलूक के खुदा का हक अदा करते हुए, अपने हक को माफ करते हुए, अल्लाह को राजी करने के जज्बे से गली दर गली, कस्बा दर कस्बा, शहर दर शहर, मुल्क दर मुल्क फिरना, ये हमारा काम है, इसका नाम दावत है। इसके लिए बोलो चार महीने को कौन तैयार है? वक्त वही कीमती है जो अल्लाह के दीन की निस्बत पर लग जाए, और पैसा वही है जो अल्लाह की राह में खर्च हो जाए, और ना तो बड़ा हिसाब किताब। अल्लाह हमारी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। बस दोस्तों, एक बात आखिरी अर्ज कर दूं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, बहुत आफियत से हो, अमन से हो, और अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को अमन से और आफियत से रखे। लेकिन अल्लाह पाक के यहां एक खास बात यह है कि जब उसकी नियामतों की कदर होती है तो नियामत बढ़ाते हैं। हम सब अल्लाह की नियामतों में ढके हुए हैं, हर तरह की आजादी है, जमातों में जा सकते हैं, वक्त लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं, अल्लाह का फजल है। इसकी कदर करो, और इसके लिए जब तक आदमी मकाम पर हो, मकाम पर अपनी मस्जिद की जमात के साथ अपनी जरूरत समझकर एहतिमाम के साथ पांचों काम, महीने के तीन दिन भी, हफ्ते की दो गश्तें भी, घर मस्जिद की तालीम भी, और रोजाना ढाई घंटे की मेहनत से अपनी मस्जिदों को आबाद करो, और जिस तरह मस्जिदें आमाल से आबाद हों, ऐसे ही अपने घरों को आमाल से आबाद करो। अल्लाह ने बहुत मौके दिए, समझे, आने वाली जमातों की नुसरत करना, अपने पुराने जिम्मेदार, बड़े बूढ़े, बड़ी उम्र वाले, उनका इकराम एहतराम, खास तौर पर उलमाए किराम अपने पड़ोस में रहते हैं, मोहल्ले में हैं, हलके में हैं, यानी उनका एहतराम। एक किताब है जजाउल आमाल, आमाल का बदला, उसमें लिखा है कि जब ज़कात देनी रुक जाती है तो बारिशें रुकती है, बदकारी जब आम हो जाती है तो जमीनों में जलजले आते हैं। जब उलमा का एहतराम नहीं होता है और उलमा की तौहीन और बेअदबी होती है तो लोग ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं कि कभी नाम न सुना हो। घरों में बच्चे पैदा होते हैं माजूर, ऐसी बीमारी कि साहब यहां भी चेक करा लिया, वहां भी चेक करा लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन हमारी नजर उधर नहीं जाती, हमारा जहन उधर नहीं जाता। हमको तो वो जो बता देते हैं कि ये फुलाना इतना पॉइंट था और फुलाना इतना पॉइंट था और ये इतना था इसलिए बच्चा ऐसा हुआ है, ये तो दुनिया वालों की बातें। ऐसी बीमारियां कि साहब डॉक्टर कहते हैं साहब हमारी समझ में नहीं आता है। अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। इसलिए अपने मुआशरे को सादा बनाना, एक दूसरे का हक पहचानना, हर हक वाले को हक देना, बड़ों का एहसास इकराम, उलमा की तौकीर, मन लम युअक्किर कबीरना वलम युवज्जिल उलमाअना फलैस मिन्ना। जो अपने बड़ों की तौकीर और इज्जत न करे और उलमा का एहतराम न करे, हुजूर फरमाते वो हम में से नहीं है। जितना चाहे दावा करता रहे, हुजूर ने फरमा दिया हम में से नहीं है, समझे। इसलिए दोस्तों अपने माहौल में इन चीजों को और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों का कि हमें तुम्हें तो ईमान की, आखिरत की, जन्नत की, दोजख की बातों के सुनने का मौका मिलता है। उलमा आते हैं, मशाइख आते हैं, जमातें फिरती है, मदरसे हैं, पढ़ना पढ़ाना है। ये क्या आइंदा हमारी जनरेशन के लिए जो माहौल दुनिया में बन रहा है कि पता नहीं क्या हो, है नहीं? इसलिए अपनी, अपने घर की, अपने बच्चों की, अपनी औलाद की तालीम और तरबियत, उनका दीनी जहन बनाना। लेकिन आप तो जब आए थे हिंदुस्तान पाकिस्तान से तो बहुत पापड़ बेल के और बहुत सारी तकलीफें उठा के आए थे, लेकिन अब यहां रहते रहते किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, अब जो बच्चे यहां पैदा हो रहे हैं वो तो आंख खोलते हुए अपनी गुजरात में कह रही घोड़िया नो सेठ, घोड़िया नो सेठ, कि वो तो उसने तो आंख खोली तो पालने में उसको तो वो नजर आता है कि जिसको कभी तसव्वुर भी नहीं बाप को और दादे को, है ना। इन नियामतों की कदर करते हुए अपनी औलाद की तालीम और तरबियत, उनको दीन सिखाना, दीन की मेहनत पर लगाना, अखलाक सिखाना, ये माँ बाप के जिम्मे है। अल्लाह हमें तुम्हें कबूल फरमा। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ آپ کی طرف سے بے شمار نعمتوں کی بارشیں ہم پر ہوئی ہے، اے اللہ ہم نے آپ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے، ہم اپنی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، اے اللہ اپنے ماں باپ کی طرف سے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، آج تک کی ہماری ناقدریوں کو معاف فرما دے، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ہمارے دلوں کے رخ کو صحیح فرما دے، ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، امت کے ہر طبقے کو دین کی محنت پر مجتمع فرما دے، اس عالی محنت کے لیے سینوں کو منشرح فرما دے، اے اللہ امت کی جان و مال کو اس کے لیے قبول فرما لے، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے گھروں کو ایمانی بنا دے، ہماری مسجدوں کو ہمارے مسجد سے آباد فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اے اللہ کھیل کود میں اور تماشوں میں اور فیشن میں اور چیزوں میں زندگی کھپا کر اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمیں آخرت کا دھیان نصیب فرما، مرنے سے پہلے پہلے ان پانچوں سوالوں کا جواب، اے اللہ ہماری زندگی میں عملی طور پر تیار ہو جائے، اے اللہ اس کی تو غیب سے صورتیں پیدا فرما، जिन दोस्तों ने, साथियों ने, मर्दों ने, औरतों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है, हम में से हर एक की जायज तमन्ना को पूरा फरमा। ए अल्लाह, तो हमें ईमान की हकीकत नसीब फरमा दे, हमारी नमाजों में जान डाल दे, हमें इल्म नबूवत से मालामाल फरमा दे, हर आन घड़ी अपना ध्यान नसीब फरमा। ए अल्लाह, हर हक वाले का हक पहचान कर आफियत के साथ मरने से पहले उसको अदा करवा दे। ए अल्लाह, क़यामत के मैदान में हमें किसी के हक में गिरफ्तार न फरमाइयो। ए अल्लाह, तो हमसे राजी हो जा, इस दावत के आली मेहनत के लिए तो हमें कबूल फरमा ले, हमारी जानो माल को कबूल फरमा ले, हमारे सफर हजर को कबूल फरमा, आसान फरमा, मुस्मिर बरकात व खैरात फरमा, तेरे इन बंदों के इरादों को, नीयतों को अपने करम से कबूल फरमा, इनके लिए तेरे रास्ते में निकलना आसान फरमा, हर तरह की रुकावटों को आफियत के साथ दूर फरमा दे, जिसका जो मसला और जिसकी जो परेशानी हो आफियत के साथ हल फरमा दे। ए अल्लाह, जो बच्चे बोलने से और जो बच्चे सोचने से अल्लाह माजूर है, उनके हाफिजों को कवी फरमा दे, उनकी जबानें खोल दे, उनकी जबानों पर कुरान जारी फरमा दे। ए अल्लाह, जो जिस तरह की परेशानी में है, कारोबारी हो, लड़के लड़कियों की हो, ए अल्लाह घरों की हो, हर तरह की समाजी हो, हर एक की हर परेशानी को दूर फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।